सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। मुस्कान है जीवन की, मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
अपने शरीर को रिलैक्स करें और ध्यान को लेकर आए त्रिकुटे के बीच। यहाँ एक बार उंगली रखें, यहाँ पर एक बार उंगली रखें। सभी सेवाधारी भी साइलेंस करेंगे, सभी सेवाधारी साइलेंस में रहेंगे। और भाई बहनें भी साइलेंस में रहेंगे। अब उंगली रखें यहाँ पर, शायद तिलक लगाते हैं। हाँ, ये जो पॉइंट है जहाँ हम तिलक लगाते हैं, आज सुबह आप सबने अपने आप को जाना होगा। उंगली नीचे रखें, एग्जैक्टली वो पॉइंट जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वो है मुझ आत्मा का रहने का स्थान। तो जैसे हम चंदन का तिलक लगाते हैं, उसी तरह एक मिनट के लिए बिल्कुल एकाग्र होकर, ये सभी को अभ्यास करना है, यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ बिल्कुल देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ हम देखेंगे एक सुनहरा चमकता हुआ सितारा। सभी इसको देखने का अभ्यास करेंगे इस पॉइंट पर। जैसे चंदन का तिलक होता है, ऐसे ही मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, इसको देखने का अभ्यास करना है। बिल्कुल सीधा होकर बैठें और बुद्धि को वहीं एकाग्र करें, शरीर को रिलैक्स करें और देखना है भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। और अपने आप को देखते हुए साथ साथ जो संकल्प सुनेंगे उसको मन में दोहराएंगे। एक है खुद को देखना और दूसरा है खुद को स्मृति दिलाना कि मैं कौन। तो देखते रहें अपने आप को, सुनहरे रंग का चमकता हुआ सितारा और स्मृति दिलाएं खुद को, मैं पवित्र आत्मा, मैं दिव्य आत्मा हूं। हर एक इसको दोहराएगा और एक ही संकल्प को पकड़ के रखेंगे, खुद को देखते रहेंगे और एक ही संकल्प को पकड़ेंगे, मैं दिव्य आत्मा हूं। मैं दिव्य आत्मा हूं। मैं दिव्य आत्मा हूं। और इसको देखेंगे कि मुझ आत्मा से पवित्रता की लाइट मुझसे निकलते हुए चारों ओर फैल रही है। पवित्रता की लाइट मुझसे निकलते हुए इस हॉल में फैल रही है, इसको देखना है। पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा से निकलते हुए इस हॉल में फैल रही है। इस हॉल में पवित्रता की वाइब्रेशन है। फिर से देखें, भ्रुकुटी के बीच मैं चमकता सितारा, मैं दिव्य आत्मा हूँ और मुझसे निकलती हुई पवित्रता की किरणें इस हॉल में फैल रही हैं। अब फिर से मुझसे निकलती हुई पवित्रता की किरणें पूरे देश में फैल रही हैं। इसको देखना है, मुझसे निकलते हुए पवित्रता की ऊर्जा, वो शक्ति पूरे देश में फैल रही है। और अब देखेंगे पवित्रता की शक्ति मुझसे निकलकर पूरी सृष्टि पर फैल रही है। अपने सामने सृष्टि को लेकर आए। मैं पवित्र आत्मा, पवित्रता की ऊर्जा मुझसे निकलते हुए सारी सृष्टि पर फैल रही है। अब अपने आप को स्मृति दिलाएं, मेरे संकल्पों से ये सृष्टि बनती है, मेरे संस्कारों से ये संसार बनता है। मैं आत्मा, मेरी शक्ति का प्रभाव पूरे विश्व के वायुमंडल पर पड़ता है। भारत को स्वर्णिम भारत बनाना, विश्व को स्वर्ग बनाना, ये मुझ आत्मा की जिम्मेवारी है। मेरा हर संकल्प सृष्टि को बनाता है। ॐ शांति, ॐ शांति। हाथ उठाएं, कौन कौन दो मिनट रोज ये कर सकता है अपने घर पे बैठकर हाथ उठाओ। आसान है ना, बहुत आसान है ये। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, हम अपने तन की भी सफाई करते हैं, उसी तरह अब हमें वायुमंडल की सफाई करनी है। इस सृष्टि को, जो इस समय का मौसम है या वायुमंडल है, इस दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग अर्थात जहाँ दुख, अशांति, कले कलेश बढ़ जाते हैं। आप में से किस किस को खुशी चाहिए, वो हाथ उठाएं एक बार। अच्छा, एक मिनट पकड़ के रखना, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अच्छा, अब सभी चारों तरफ घूम के देख लो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट घूम के देखो कि कितने लोगों ने हाथ उठाया। और अगर स्क्रीन पे देखना है तो सबके हाथ दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, हाथ नीचे रखो। अच्छा, वैसे आप में से किस किस को शांति भी चाहिए? हाँ, तो स्क्रीन में देखना, सबके हाथ दिखेंगे। तो हमने एक ऐसा योग बनाया जिसमें हमने कहा मुझे खुशी चाहिए। हाथ ऐसे करना, क्या कहते हैं हम, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। कलयुग में हाथ ऐसा होता है, चाहिए 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 होता है, और जितना भी हम चाहिए चाहिए कर रहे हैं उतना वो कम ही होता जा रहा है। सत्ययुग में हाथ कैसा होगा करके देखो, हाथ सत्ययुग में कैसा होगा? ऐसा हाथ होगा, वहाँ चाहिए चाहिए नहीं होगा, वहाँ कैसे होंगे? देने वाले होंगे। इसीलिए सत्ययुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है, तो देवी देवता धर्म में हर देवी देवता आत्मा का हाथ कैसे होता है? देने वाला होता है। आज कलयुग में भी जब हम देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति में हाथ हमेशा कैसे होता है? देने वाला होता है। तो जब सत्ययुग है तो हाथ देने वाला है। हाथ देने वाला है मतलब आत्मा भरपूर है, 16 कला संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और इसीलिए उस आत्मा इतनी भरपूर है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो सबको देने वाली है, और इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है, मतलब दिव्य आत्मा जो सबको देने वाली है। और कलयुग में आते आते हाथ कैसे हो गया? लेने वाला हो गया। अभी अगले हफ्ते दिवाली आएगी, हम सब दिया जलाएंगे, लेकिन दिवाली पर हम क्या करते हैं, एक बड़े दिए से पहले एक छोटा दिया जलाते हैं, फिर एक छोटे दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, तीसरा दिया जलाते हैं, और बहुत जल्दी सारे दिए जल जाते हैं और हम कहते हैं दिवाली। तो दिया, रिपीट करें इस शब्द को, क्या जलाते हैं हम? दिया जलाते हैं। दिया मतलब, दिया मतलब दिया। तो अपने आप से पूछिए, मैंने कौन सा दिया जलाया? क्या मैंने सबको प्यार दिया, सबको मैंने शांति दिया, सबको मैंने खुशी दिया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबको दिया, हमेशा दिया? अगर वो करेंगे तब घर में दिवाली आएगी। और जब एक दिया बनेगा तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और बहुत जल्दी पूरे भारत में और पूरे विश्व में दिवाली आएगी। लेकिन ये हमें आज डिसाइड करना है कि क्या मैं आत्मा लिया 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 से, चाहिए 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 से दिया बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक हफ्ता है दिवाली के लिए। नहीं तो हम फिर से सिर्फ मिट्टी का दिया जलाएंगे और हम कहेंगे दिवाली पूरी हो गई। मिट्टी का दिया तो जलाना ही है, लेकिन मिट्टी का दिया हमको क्या सिखा रहा है? ये शरीर मिट्टी का है, इसमें मैं चैतन्य आत्मा वो रोशनी है, लेकिन जब मुझ आत्मा को ये स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे ये भी स्मृति आती है मैं संपन्न हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, पवित्रता, सुख, शांति, प्यार मेरा संस्कार है, चाहिए नहीं, मैं हूँ वो। और जब मैं हूँ तो सबको देना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कलयुग में आते आते क्या हुआ, सारा दिन में किस किस को याद रहता है मैं आत्मा हूँ? याद नहीं रहता। ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन सारा दिन में याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ। सारा दिन में क्या याद रहता है? ये देह हूँ, नाम हूँ, रोल हूँ, पोजिशन हूँ, धर्म हूँ, जाति हूँ, बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। वो सारी चीज़ें बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो सब कुछ मेरी हैं, मैं नहीं हूँ। वो मेरा शरीर है, मेरा नाम है, मेरा धर्म है, मेरी जाति है, सब कुछ मेरा है, देश भी मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अब अगर मैं आत्मा हूँ तो दूसरा कौन है? एक सेकंड के लिए हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। जो आपके साथ बैठे हैं, आप मुड़कर उनकी तरफ देखेंगे, और उनकी तरफ देह को नहीं देखेंगे, जैसे खुद को यहाँ देखा चमकता हुआ सितारा, अब अपने साथ जो बैठा है उनको देखें, और उनको भी उधर देखें कि वो भी एक चमकता हुआ सितारा है। करें एक बार सभी, दो सेकंड के लिए देखना। हम हमेशा कपड़े देखते, शरीर देखते, औधा देखते, विजिटिंग कार्ड देखते, वो सब कुछ देखते, और वो सब कुछ देखने में वो कौन है वो तो देखना ही भूल जाते हैं कि वो कौन है। अब जैसे ही ये स्मृति आएगी कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, तो हम दोनों क्या हो गए? करो हाथ अंदर, हम दोनों क्या हो गए? क्या हो गए? सपोज आपको इस 8000 की भीड़ में कोई एक व्यक्ति मिलता है और आपको कहीं से पता चलता है कि यह आपका कोई बिछड़ा हुआ भाई है या बहन है, और कोई आपको पता है, कहता है आपको पता है ये कौन है? कौन है ये? आपके वो भाई हैं। तो हमने कहा नहीं, मेरा तो कोई भाई नहीं है। कहते हैं आपको नहीं पता, ये आपका ही भाई है या आपकी ही बहन है। तो सिर्फ अपने आप से एक सेकंड चेक करें, अगर आपको पता चल गया कि अब तक जो यहां बैठा था वो एक अजनबी है वही व्यक्ति, लेकिन अभी पता चला कि वो मेरा भाई है या बहन है, तो क्या हमारे अंदर कोई चेंज आएगा? किस किस को लगता है हमारे अंदर कोई परिवर्तन? अभी तक भी वही बैठा था उधर, लेकिन अब तक वो अजनबी है, वो कहीं और से आया, किसी और शहर से आया, कोई और है, और अभी अभी आपको पता चलता है ये आपका भाई या बहन है, तो आपके अंदर क्या चेंज आएगा? कोई भी बताए, क्या चेंज आएगा आपके अंदर? भावना में क्या चेंज आएगा? भावना चेंज हो जाएगी। भावना में क्या चेंज आएगा? अपनापन आ जाएगा। वही व्यक्ति है, वही मैं हूं, एक सेकेंड में अपनापन आ गया। एक सेकेंड में अपनापन आ गया। कैसे एक सेकेंड में अपनापन आ गया? उसके माता पिता मेरे माता पिता सेम हैं, मैं और वो भाई 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 बहन हैं। अभी तक कौन थे? पराए थे। अब एकदम से कौन हो गए? अपने हो गए। जब अपने हो गए तो प्यार, सम्मान, सब कुछ अपने आप आ जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब हम सबसे पहले दिन यहां आते हैं तो हमें समझ आता है कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, इसका पिता और मेरा पिता सेम है। कौन है इनका पिता और मेरा पिता? सेम है। कौन है वो पिता? रखो जरा उंगली उन पर। हाँ, अभी ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब धीरे धीरे आप इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि अभी तो हम इस देह में हैं, ये इस देह में है, इससे पहले ये किसी और देह में थे, उससे पहले हम किसी और देह में थे, ये तो सिर्फ एक यात्रा है जिसमें देह बदलता है, ये परिवार बदलता है, हमारी जाति धर्म बदलता है, शहर देश बदलता है, लेकिन मैं कौन हूं? अब उंगली रखो यहां। अब यहां आत्मा ऊर्जा है, सितारा है, एक सेकंड के लिए ना उसको यहां से निकालते हैं, ऐसा लगता है आत्मा शरीर छोड़ गई, ऐसे निकालना, आत्मा निकली बाहर, पीछे मुड़ के देखो क्या रह गया? शरीर, औधा, पढ़ाई, संपत्ति, सब रह गई। अब आत्मा कहां जाएगी? गर्भ में प्रवेश करेगी, नया शरीर लेगी, और जैसे ही नया शरीर लेगी और उसको पता चलेगा ये मेरा परिवार है, तो उसको उस परिवार के प्रति अपनापन आ जाएगा। इसीलिए ये कॉन्शियसनेस को हमें चेंज करना है। आज हमने अपने आपस में बहुत सारी दूरियां ले आए हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, व्यवसाय के नाम पर, संपत्ति के नाम पर, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, और इतनी दूरियां आ गई, इतनी दूरियां आ गई कि अब तो सच में जो घर में रहने वाले दो भाई हैं वो भी एक दूसरे से दूर होते गए, क्योंकि हम दूर 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 हो गए। और हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। एक ऐसे युग में जब एक परिवार परिवार की तरह नहीं रह रहा है, हम सारे क्या कहते हैं? विश्व एक परिवार है। तो विश्व एक परिवार कैसे मनेगा? विश्व एक परिवार हम कैसे मानेंगे कि विश्व एक परिवार है? जब हम खुद को जानेंगे तब हम दूसरे को समझेंगे, और जब हम खुद को जानकर दूसरे को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सचमुच ये मेरा परिवार है। किस किस को यहां आकर परिवार की फीलिंग आती है कि ये हमारे को परिवार की तरह देखते हैं? यहां पर फीलिंग आती है ना, प्यार की फीलिंग आती है, ध्यान रखते हमारा, क्योंकि यहां जो आपकी सेवा में है हर एक के अंदर ये कूट कूट के भरा है, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, हम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और हम एक परिवार हैं। चाहे हम किसी भी देश से आए हों, किसी भी धर्म के हो, वो सब कुछ हमारा है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कौन? अब जब हम यहां से वापस जाएंगे, आप में से कौन कौन ये प्रैक्टिस करने के लिए अब तैयार है कि हरेक जिससे आप मिलेंगे, हरेक जिससे आप मिलेंगे, वो उम्र में छोटा हो बड़ा हो, वो धन संपत्ति में छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ बाह्य है, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूं, हम एक परिवार हैं। क्या हम हरेक को मिलकर मन में सिर्फ ये एक लाइन रिपीट कर सकते हैं? वो आत्मा है, मैं आत्मा हूं, हम एक परिवार है। कौन कौन इतना सा कर सकता है? ठीक है, जो आपके साथ बैठे हैं दोनों तरफ, उनकी तरफ देखो, मन में कहो, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, हम एक परिवार है। और रोज ये करना शुरू करो, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, हम एक परिवार है। ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, हम एक परिवार है। जितनी बार ये हरेक पक्का करे, जितनी बार आप इसको दोहराएंगे, आपसे आत्मीयता का और परिवार की भासना की वाइब्रेशन पूरे देश और पूरे विश्व में फैल जाएगी। फिर से यहां उंगली रखें। जो संकल्प हम यहां करते हैं वो एक एनर्जी है, वो एक ऊर्जा है। ऊर्जा अंदर मस्तिष्क के अंदर नहीं बैठती है, ऊर्जा फैल जाती है, पूरे कमरे में जाती है, मकान में जाती है, शहर में जाती है, देश में जाती है, विश्व में फैल जाती है। अगर हम अभी एक संकल्प करें, मैं इनसे ज्यादा बड़ी हूं, ये तो छोटे हैं, तो मत भेद भेदभाव की ऊर्जा मुझसे निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। फिर आप किसी से मिले और हम कहें ये मैं इनसे अमीर हूं या मैं इनसे गरीब हूं, फिर हमारे बीच से मतभेद की वाइब्रेशन पूरे परिवार में फैल जाती है। लेकिन हरेक से मिलते हुए मैं आत्मा, ये आत्मा, हम इक्वल हैं, हम एक समान हैं, हम परिवार हैं, तो आपसे हरेक को परिवार की भासना आनी शुरू होगी और आपको हरेक के लिए परिवार की भासना आनी शुरू होगी, क्योंकि आपसे सम्मान और एकता की वाइब्रेशन सबको मिलनी शुरू हो जाएगी। एक मिनट आंख बंद करें, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने शहर में पहुंच जाइए और आप किसी ऑफिस में आज जा रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी में कोई ऑफिस है और वहां के मालिक से मिलने आप जा रहे हैं, तो अपने आप को देखिए, आप उस ऑफिस या उस कंपनी के गेट पर आकर पहुंचे हैं। गेट पर एक भैया खड़े हैं जो गेट खोलते हैं, उनको देखिए, आप कैसे मिलते हैं उनसे। फिर गेट को क्रॉस करते हुए आप उस ऑफिस में जाइए, जैसे हर ऑफिस में एक डेस्क होता है, एक रिसेप्शन होती है, वहां एक बहन या भाई खड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं, आप उनसे कैसे मिलते हैं। फिर आप थोड़ा सा अंदर जाते हैं ऑफिस में, वहां उस ऑफिस के मैनेजर हैं जो सब कुछ संभालते हैं, आप उनसे मिलते हैं। और फिर लिफ्ट लेकर हम थोड़ा सा ऊपर की फ्लोर पर चलते हैं, वहां उस ऑफिस के मालिक बैठे हैं, हम उनसे कैसे मिलते हैं। फिर से एक्सरसाइज देख लीजिए। पहले हम गेट पर किसी से मिले, फिर हमने जब प्रवेश किया ऑफिस में तो हम फ्रंट डेस्क पर, रिसेप्शन पर किसी से मिले, फिर हम मैनेजर से मिले और फिर हम उस ऑफिस के मालिक से मिले। हम 4 मिनट में 4 लोगों से मिले। अब हाथ उठाएं, क्या हमारा व्यवहार चारों के साथ अलग अलग था? थोड़ा सा हमारा नजरिया, हमारा बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार अलग अलग था? हाथ उठाएं, किस किस का अलग अलग था चारों से? वेरी गुड। अब इन चारों में से मेरा असली व्यवहार कौन सा था, मेरा अपना संस्कार कौन सा था, जो गेट पर था, जो रिसेप्शन पर था, जो मैनेजर के साथ था या जो मालिक के साथ था, मेरा अपना संस्कार कौन सा था? और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से पूछिए, हम 4 बार क्यों बदले? मैं एक ही हूं, मैं चार बार मेरा व्यवहार स्वभाव क्यों बदला? क्योंकि हम किससे मिल रहे थे? चले बताएं, किससे मिल रहे थे हम? बोलिए बोलिए बोलिए, हम किससे मिल रहे थे? हम औधे से मिल रहे थे। तो किसी औधे के सामने हम ऊंचे थे वो नीचे थे, किसी औधे के सामने वो ऊंचे थे हम नीचे थे, और इसीलिए हम चार बार बदले। अब फिर से आंख बंद करिए, फिर से उन चारों को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क, औधा वही रहेगा, लेकिन जब आप अब गेट पर हैं तो आप कहेंगे ये आत्मा है जो ये रोल प्ले कर रहे हैं। फिर आप रिसेप्शन पे जाएंगे, आप कहेंगे ये भी एक बहुत प्यारी सी आत्मा है जो ये रोल प्ले कर रही है। फिर जब आप फर्स्ट फ्लोर पे उनसे मिलेंगे, आप कहेंगे ये आत्मा है जो मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं। और जब आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे और मालिक से मिलेंगे, आप कहेंगे ये भी आत्मा है जो इस समय इस कंपनी के मालिक का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन चारों ही पवित्र दिव्य आत्मा है, और मैं आत्मा इन चारों से मिल रहे हो। किस किस को लगता है कि स्वभाव थोड़ा एक जैसा होने लगेगा आप सबके साथ? सम्मान एक जैसा देंगे चारों को? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो बाह्य जो देना है वो अलग होगा। जैसे जब आप गेट पर जाएंगे तो वो भैया आपके लिए गेट खोल देगा, आपको उनके लिए गेट नहीं खोलना है, वो उनका रोल है गेट खोलने का। जब आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो शायद आप उनके लिए खड़े होंगे, वो बैठे होंगे। ये सब बाह्य रोल होता है, लेकिन जो सम्मान होता है वो उस आत्मा के लिए होता है। रोल अलग अलग हो सकते हैं, रोल ऊंचे नीचे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रोल निभाने वाली आत्मा वो सारी कैसी है? एक है, इक्वल है। आज अपने आप से पक्का कीजिए कि अगर मुझे भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, अगर मुझे विश्व को स्वर्ग बनाना है, तो मुझे हरेक को इस इक्वालिटी के नजरिए से देखना है कि कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है, हम एक समान, मैं भी पवित्र आत्मा और वो भी पवित्र आत्मा है। कौन ये प्रतिज्ञा करने के लिए रेडी है? पक्का पक्का उसका दो दिन का अभ्यास हम यहीं करेंगे। किसी के साथ बहुत मीठा बात करना, किसी के साथ ऐसे ही करके बात कर देना, ये क्या हुआ? ये हमारे देह भान को बढ़ाता है, ये हमारे अहंकार को बढ़ाता है। थोड़े दिन पहले हमने रावण का क्या किया? क्या किया, किस किसने किया? रावण को खत्म करके आए ना सारे। हाँ, पहले शक्तियों का जागरण किया, अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों का आह्वान किया, और जब शक्तियों का आह्वान किया, शक्तियां जागृत हुई, तो दसवें दिन हमने रावण को खत्म कर दिया। और जब तक हम शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, रावण को खत्म नहीं करेंगे, तो रावण राज्य खत्म होकर राम राज्य सृष्टि पर आएगा कैसे? वो राम राज्य किसने लेकर आना है? किसने लेकर आना है? देख ही ले चारों तरफ इस कमरे में, राम राज्य किसने लेकर आना है सृष्टि के ऊपर? बस सिर्फ पांच लोगों ने राम राज्य लेकर आना है सृष्टि पर। अच्छा चलो, राम राज्य छोड़ो, रावण राज्य सृष्टि पर कौन लेकर आया? वो हाथ उठाओ पहले, थोड़ा सा उठा लो, उठा लो। कलयुग को किसने बनाया? कलयुग किसने बनाया? कैसे बनाते हैं हम कलयुग? गुस्सा करते हैं, हमने कलयुग बनाया। चिंता करते हैं, कलयुग बनाया। जोर से बोला, कलयुग बनाया। ईर्ष्या की, कलयुग बनाया। काम विकार, कलयुग बनाया। नफरत की, कलयुग बनाया। निंदा की, कलयुग बनाया। कौन से विकार हैं? दोहराएं सारे एक बार, कौन से विकार हैं सारे? दस विकार कौन से हैं? दस सिर है रावण के। काम, चलो रिपीट करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, आलस्य। किस किस के पास हैं ये दस? उठा लो, उठा लो हाथ, किस किस के पास है ये दस? हाँ, ये है रावण राज्य। जहां हर आत्मा के पास ये दस हैं, वो है रावण का राज्य, मतलब विकारों का राज्य चल रहा है। अब हमें कौन सा राज्य लेकर आना है? राम राज्य। राम राज्य में कौन से संस्कार होंगे? अब ये भी दोहराएंगे, पवित्रता, रिपीट करें अच्छे से, कौन सा वाला? पवित्रता, शांति, रिपीट, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद, सतोगुणी आत्मा। जब 10 विकार हैं तो आत्मा कैसी वाली बन जाती है? चाहिए 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 वाली बनती है। जब 7 गुण हैं तो आत्मा कैसी वाली बन जाती है? देने वाली बन जाती है। अब हमें कौन से युग में जाना है? हमें रावण राज्य खत्म कर सृष्टि पर राम राज्य लेकर आना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये अहंकार, देह अभिमान, देह भान, इसको पहले खत्म करना है। और उसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं आत्मा हूँ इस स्मृति को जागृत करना है। मैं परमात्मा की संतान हूँ और सभी परमात्मा की संतान है इस स्मृति को जागृत करना है। और जब हम इस स्मृति को जागृत करेंगे तो वो 7 गुण मुझ आत्मा के अंदर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? हाथ उठाओ, क्लियर हो गया? क्या करना है हमें? 10 जो विकार हैं उस राज्य को खत्म करना है। और उसके लिए क्या करना है? अपने अंदर के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को, वो संस्कारों को क्या करना है? जागृत करना है। और जब वो जागृत करेंगे, उसका सिंपल तरीका कौन सा है? मैं आत्मा हूँ स्मृति का अभ्यास करना, और दूसरा भी आत्मा है इसको बार बार अपने आप के साथ पक्का करना। तो कौन कौन इस पर थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए तैयार है कि हमें 10 विकारों को खत्म करना है? आप 4 दिन निकाल कर यहाँ आए हैं, कोई आप जब वापस जाएंगे कोई आपसे पूछेगा वहां से क्या लेकर आए, क्योंकि कभी भी कहीं जाते हैं तो कुछ लेकर आते हैं ना वापस, तो आपको उनसे कहना है ऐसे गए थे। करो, कैसे गए थे? ऐसे गए थे और ऐसे बनकर आए हैं वापस, ये करके आए हैं हम, ऐसे गए थे। सारा दिन हम सबके सामने खड़े रहते हैं, मुझसे प्यार से बात करो, मुझे 2 मिनट शांति दो, मुझे फोन तो करो, मुझे खुशी दो, मेरा कहना मानो, मेरे अनुसार रहो, सारा दिन ऐसे रहते हैं। और जिनके सामने हम ऐसे खड़े हैं वो भी कैसे खड़े हैं? अपने परिवार को देख लो, अगर घर में 4 लोग हैं, एक जना ऐसे खड़ा है तो दूसरा भी कैसे खड़ा है? वो भी ऐसे खड़ा है। और तीसरा भी कैसे खड़ा है? वो ऐसे खड़ा है। तो देने वाला कौन? तो हर घर में एक दिया चाहिए। चलो अभी अपने घर पहुंच जाओ और देखो अपने आप को, मैं अपने परिवार का दिया, सबको देने वाली आत्मा।
योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है सारा। चलना है तपत अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
इसी साइलेंस में एक संकल्प करेंगे अपने आप के साथ, मैं आत्मा अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैं आत्मा अपने परिवार का दिया, सबको देने वाली आत्मा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सर्वशक्तिवान परमात्मा से लेते हुए मैं आत्मा सबको देने वाली आत्मा हूं। अभी सभी अपने सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, मन पर देखें स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है। आ गया नजर सबको? ठीक है, अब इसमें देखिएगा जो पहला भाग है हाथ कैसा है, करें सभी अपना हाथ, पहला भाग हाथ कैसा होता है ऐसा, ये है ना पहला भाग, इधर हाथ कैसा है ऐसा, ठीक है ये है। दूसरा भाग हाथ किधर चला जाता है, नीचे ऐसा हो जाता है। तो ये जो पहला भाग है हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो पहला भाग है ये सृष्टि का पहला युग है, और वो युग कौन सा है बोले सभी, कौन सा युग है? सत्युग। हाथ कैसा है? सब कुछ सबका देने वाला हाथ है। दूसरे युग में हाथ थोड़ा सा क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। सत्युग में आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, सत्युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म एक राज्य एक भाषा, सब कुछ एक है। धीरे धीरे आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, समय बीतता जाता है। जैसे हम आज सुबह से दोपहर में आए, दोपहर से शाम में आए, शाम से आज रात में चले जाएंगे, तो सृष्टि की जो सुबह है उसको सत्युग कहते हैं। फिर थोड़े समय बाद आत्मा की शक्ति थोड़ी सी कम होती है, वो 16 कला से 14 कला हो जाती है, तो वो सृष्टि की दोपहर होती है जिसको त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग में हाथ कैसे हो गया दिखाओ, त्रेता युग में हाथ कैसे था स्तंभ, ऐसे हो गया, ठीक है। फिर समय और बीतता है, आत्मा की शक्ति थोड़ी थोड़ी और कम होती है, और हम द्वैत के युग में आ जाते हैं। पहले क्या था, एक राज्य एक धर्म एक भाषा, हर एक आत्मा आत्मिक स्थिति में थी। शाम के युग में हाथ कैसे हो जाता है, स्वास्तिक में कैसे है तीसरा भाग, ऐसे हो गया ना, कैसे हो गया? अभी कैसे था पहले हाथ, ऐसे वाला था, फिर कैसे हुआ, ऐसे हुआ, तीसरे वाले में हाथ कैसा हो गया, लेने वाला हो गया। जैसे ही मैं आत्मा हूं ये भूलना शुरू होगा, देह भान में आना शुरू करेंगे, अहंकार में आना शुरू करेंगे, आत्मा की शक्ति घटती जाएगी, तो देने की बजाय हम कौन से वाले बन जाएंगे, शांति चाहिए खुशी चाहिए। और ऐसे करते करते शक्ति और घट गई और आत्मा चौथे युग में आ गई। चौथे युग में भाग हाथ कैसा है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे थे सभी करेंगे। पहला भाग कैसा है, वन, ये कैसा है, देने वाला, दो, देना थोड़ा सा कम हो गया, तीसरा, मांगने वाला, चौथा, ये क्या कर रहे हैं हम, ये हाथ से ऐसे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये हम मारते हैं। हम सबसे ज्यादा किसको मारते हैं सारा दिन में, उंगली रखो, सबसे ज्यादा किसको मारते हो सारा दिन में, खुद को ही मारते हैं। कैसे मारते हैं, सोच 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 सोच, व्यर्थ सोच, नकारात्मक सोच, ज्यादा सोच 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 के दर्द कहां होना शुरू हो जाता है, रखो सर हाथ, कहां दर्द होना शुरू होता है, यहां दर्द होना शुरू होता है। यहां जो दर्द हुआ किसने मारा हमको, किसने मारा हमको, हमने खुद को मारा। और जब हमने इतना सोचा 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 तो हमारी सारी वाइब्रेशन, हमारी जो सारी ऊर्जा है वो बाहर जाती है और वो दूसरों तक भी पहुंचती है और दूसरों को भी भारी कर देती है। वन वन टू थ्री फोर. अब पकड़ के रखेंगे, ये कौन सा योग है? कलयुग. इसके बाद कौन सा योग आना है? इसके बाद कौन सा योग आएगा? ये वाला योग आएगा. तो हमें सिर्फ क्या से क्या करना है, करें ये छोटी सी एक्सरसाइज, हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसे से ऐसे करना है, ऐसे से ऐसे करना है. कोई भी परिस्थिति आए ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है. पक्का करो इसको. कोई भी परिस्थिति आए खुद को सोच सोच के मारना नहीं है, परिस्थिति और आत्मा को क्या करना है? दुआ देनी है. खुद को भी मारना नहीं है, खुद को भी क्या देना है? दुआ देनी है. जैसे ही हम खुद को सोच सोच के तंग करते हैं हम कलयुग को और बढ़ाते हैं, और जैसे ही हम शुभ भावना देते हैं, शुभ कामना देते हैं, सम्मान से बात करते हैं, हम कौन से युग को बना रहे हैं? हम कौन से युग को बना रहे हैं? हम सत्ययुग को बना रहे हैं. तो दिवाली किसका यादगार है? दिवाली यादगार है कि रावण राज्य खत्म हो, सृष्टि पर राम राज्य आएगा, जहां चारों तरफ दिए जले होंगे, मतलब हर आत्मा देने वाली आत्मा होगी. कलयुग किस किसने बनाया? हाथ उठाओ. कलयुग किस किसने बनाया? ओहो, अच्छे से हाथ उठा लो. आज सुबह भी कुछ किया होगा कलयुग बनाने के लिए. एक संकल्प भी चिंता करते हैं, कलयुग बन रहा है. थोड़ा सा ऊंची आवाज में किसी से बात करते हैं, कलयुग को बढ़ा रहे हैं. किसी की गलती को एक सेकंड में खत्म करते हैं, क्या बना रहे हैं? बोलें सभी. किसी की गलती को एक सेकंड में खत्म करते हैं, क्या बना रहे हैं? सत्ययुग बना रहे हैं. कोई हमारे से बुरी तरह से बात करता है, हम उससे प्यार से बात करते हैं, हम क्या बना रहे हैं? कोई प्रॉब्लम आई है लेकिन हम उसको भी वरदान देते हैं कि ये परिस्थिति भी मेरे कल्याण के लिए आई है, तो हम क्या बना रहे हैं? सत्ययुग बना रहे हैं. कलयुग किसने बनाया? मैंने बनाया. सत्ययुग कौन बनाएगा? सत्ययुग कौन बनाएगा? अब हाथ उठाओ. कौन कौन सत्ययुग बनाने वाले? आपकी फोटो खींचेगी अभी, देखना आप ये वाली फोटो पक्का खींचेगी आपकी. वापिस जाओगे तो बदले हुए जाना है. कलयुग से आए थे, वहां की दुनिया में अभी भी कलयुग होगा, लेकिन हमें सबसे पहले सत्ययुग कहां बनाना है? रुखो उंगली कहां बनाना है? यहां. सत्ययुग यहां स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे संस्कारों से संसार बनता है, हमारे संकल्प से सृष्टि बनती है. अगर हमने अपने संस्कारों को बदला, संकल्प को बदला, तो हम सृष्टि परिवर्तन के कार्य में अपना योगदान कर रहे हैं. हम यहां पर एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनते हैं, सभी ध्यान से सुनना. एक बार जंगल में आग लगी थी और वो आग फैलती ही जा रही थी. एक छोटी सी चिड़िया, कितनी छोटी होती है चिड़िया, छोटी सी चिड़िया सागर के पास गई, अपने चोंच में पानी भरा और जाकर वो आग पर ऐसे उस पानी को गिरा रही थी, फिर जा रही थी सागर के पास, जा रही थी चोंच में पानी भर रही थी और उस आग पर गिरा रही थी. तो कोई हंस दिया उसको देखकर और कहता है, का चिड़िया, तुम्हारे ये चोंच भर पानी से ये आग थोड़ी बुझने वाली है. तो चिड़िया ने क्या कहा? इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में तीन तरह के लोग होंगे. एक, जिन्होंने आग लगाई. दूसरे, जो आग को जलता हुआ देखते रहे, कुछ नहीं किया. और तीसरे, जिन्होंने आग बुझाई. तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा. ना ना, ये ताली किसके लिए? चिड़िया के लिए. ये तो कहानी है. अब अपने लिए बताओ, हमें कौन सी साइड पे खड़े होना है तीनों में से? एक है आग लगाने वाले, एक है आग को जलता हुआ देखने वाले, और एक है आग बुझाने वाले. हम तीनों करते हैं आजकल. जिस क्षण मुझ आत्मा के सिर्फ मन की स्थिति में भी कोई विकार है, अगर मैं अभी अभी किसी के लिए एक संकल्प भी निंदा का करती हूं, शब्द भी नहीं, सिर्फ संकल्प, सिर्फ सोच भी निंदा का करती हूं, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे भी कोई होता है, वैसे भी कोई होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए. मैंने आग को क्या किया? मैंने क्या किया? आग लगाई, देखा या बुझाया? क्या किया? आग लगाई. कोई बात आई, किसी ने गलती की, मैंने उनको गुस्सा कर दिया. आग लगाई, देखा या बुझाया? क्या किया? बोलते जाओ, पक्का हो कौन सी साइड पे? आग लगाई, देखते रहे या बुझाया? लगाया. कोई परिस्थिति आई, चिंता 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 करते गए. आग लगाई, देखते रहे या बुझाया? तो सारा दिन हम ज्यादा क्या कर रहे हैं? ताली किसके लिए आपने बजाई थी? हाँ, ताली किसके लिए बजाई थी? आग लगाने के लिए कोई ताली नहीं बजती कभी किसी के लिए। आग किस, आग बुझाने वाले के लिए ताली बजती है ना। तो हम आग लगाते कैसे हैं? जब हम उन 10 विकारों में से कोई भी विकार संकल्प में भी लाते हैं तो हम सृष्टि की आग को बुझा लगा रहे हैं। सृष्टि पर कलयुग की आग लगी हुई है, विकारों की आग लगी हुई है। और ये जो विकार हैं अब अति में जाने लग गए हैं। आपको नहीं लग रहा ये विकार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अति में जा रहे हैं? लेकिन कोई भी चीज जब अति में जाती है तो उसका अंत हो जाता है। तो ये विकार भी अति में जाकर इसका अंत होना है, लेकिन अंत तब होगा जब हम एक नई शुरुआत करेंगे। तो एक है हम आग लगाते हैं, दूसरा है अगर आपके आसपास कोई है जो परेशान है, नाराज है, दुखी है, उदास है, अगर हम उसके बारे में भी सोचते, चिंता करते रहते तो हम उसकी आग को भी, आग चलता हुआ देखकर उसकी भी आग को बढ़ा रहे हैं। आज से हम तीसरा वाला बनने वाले हैं। कौन सा है तीसरा वाला? उसके लिए हाथ कैसा होगा? आग बुझाने वाले, आग बुझाने वाले हैं। दोनों हाथ ऐसे रखें, एक बार अपने बाएं हाथ पर अपने परिवार के किसी सदस्य को रखें, अपने बच्चे को रखें, और राइट हैंड दाएं हाथ पर खुद को रखें। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है घर में और अचानक आपके बच्चे के जीवन में कोई बात आती है जिससे वो बच्चा बहुत परेशान, हताश हो जाता है। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, लेफ्ट हैंड पर आपने बच्चे को रखा है, उसके जीवन में कोई बात आती है, बीमारी आती है, कोई फेलियर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो बहुत हताश हो जाता है। जब वो हताश परेशान हो जाता है तो उसकी वाइब्रेशन किस तरफ जाएगी, ऊपर या नीचे? उसकी स्थिति कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे? थोड़ा सा नीचे। तो लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा नीचे करेंगे, ऐसे जाएगी। अब क्योंकि हमारा बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट है, मोह है, उसको ऐसा देखकर आप कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? तो आपका हाथ राइट वाला भी किस तरफ जाएगा? और जब आपका हाथ राइट वाला भी नीचे जाएगा तो आपसे उसको कौन सी वाली वाइब्रेशन मिलेगी? दर्द वाली, चिंता वाली। और जब आपसे उसको दर्द और चिंता वाली वाइब्रेशन मिलेगी, वो हाथ लेफ्ट वाला और किधर जाएगा? और नीचे जाएगा। उसको वैसा देखकर हम कहां जाएंगे? और नीचे जाएंगे। और हम सब इकट्ठे मिलके कहां जा रहे हैं? नीचे, नीचे, नीचे। फिर से लेकर आए, होना कहां चाहिए? अगर लेफ्ट हैंड पे जो परिवार का सदस्य है उसके जीवन में कोई बात आई और वो थोड़ा सा नीचे हो भी गए, हमें कहां जाना चाहिए? करो हाथ, राइट हैंड कहां होना चाहिए? ऊपर। कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? और अगर हम ऊपर होंगे तो हम उनको क्या देंगे? शक्ति देंगे। और जब हमारे से उनको शक्ति मिलेगी, वो भी कहां खींचे चले आएंगे? ऊपर। अब ये लेफ्ट हैंड पे चाहे आपके परिवार का एक सदस्य है, चाहे देश है, चाहे दुनिया है, अगर हम उनको देखकर नीचे जाएंगे तो वो और नीचे जाएंगे। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो कैसे हो सकता है? वो देख देख कर हम नीचे जाएंगे तो दुनिया और कहां जाएगी? और नीचे जाएगी। हमें कहां जाना है? हमें जाना है ऐसे, और ऐसे करके हमें क्या देना है दुनिया को? शक्ति देनी है, दुआएं देनी है, सम्मान देना है, प्यार देना है, शांति देनी है। तो फिर देश और दुनिया भी कहां चला जाएगा? ऊपर। तो जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी किसके? किसके? हमारे। तो यहां से जाने के टाइम एक चीज अपने आप से पक्का करें, आने वाला समय थोड़ा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कलयुग अति को जा रहा है। आप देखिए पिछले कुछ सालों से कोविड आया, सब कुछ बदल गया सृष्टि पर। ऐसा लगा कोविड ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल पर आ जाएगा, लेकिन कोविड के बाद कुछ भी नॉर्मल पे नहीं आया। एक के बाद एक कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ होता गया। ऐसा युग बन गया कि अचानक से कम आयु में शरीर छोड़ना भी नॉर्मल होने लगा। अचानक अचानक बैठे बैठे, सोते सोते, नींद में। और अभी तो इस साल, एक दो साल से इतने सारे बच्चों ने न जीने का फैसला ले लिया। ये कौन सा योग हमने बना दिया, और हम इसको सफलता कहते हैं, हम इसको प्रगति कहते हैं, हम इसको उन्नति कहते हैं? नहीं, प्रगति तो बहुत हुई है, लेकिन वो बाह्य प्रगति है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमको भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है तो बाह्य प्रगति के साथ साथ आंतरिक उन्नति, आत्मशक्ति भी बढ़ानी है, तब भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। क्योंकि भारत ने स्वर्णिम भारत बनना ही है, ये तो निश्चित है, और वो समय आ गया है जो सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। क्योंकि भारत के पास ज्ञान है, भारत के पास अध्यात्म है, भारत के पास योग है, भारत के पास संस्कार है, जो हर भारतवासी खुद को ऐसा लेके जा सकता है और ऐसा लेके जाकर सृष्टि को शक्ति देकर पूरे सृष्टि को परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए सारा विश्व भारत को देख रहा है, क्योंकि भारत को ही ये मंत्र पता है कि वसुदेव कुटुंबकम होता है, ये विश्व एक परिवार होता है, ये भारत को ही पता है। लेकिन फिर हर भारतवासी की जिम्मेवारी बनती है ना। ये आपको लगता है सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं? किस किस को लगता है सबकी नजर भारत की तरफ है? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अगर कहीं प्रॉब्लम हो और सब आपकी तरफ देख रहे हो कि आप इस प्रॉब्लम को ठीक करने वाले हैं, तो फिर हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है? तो आज से पक्का करते हैं कुछ चीजें। सब रेडी है? हमें ऐसा बनना है, ऊपर जाना है और शक्ति देनी है। सब रेडी? हाथ उठाओ एक बार, फिर से फोटो खींचे। पक्का पक्का है? उसके लिए क्या करना है, कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे? पहली चीज ये जो हाथ में छोटा सा खिलौना है, इसने हमारी शक्ति को बहुत नीचे लेकर आया है। मतलब उसमें फोन की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ एक साधन है, लेकिन हमने उसको जिस तरह से उपयोग किया, हम साधन को मालिक बनकर नहीं, हम साधन के गुलाम बन गए। और जैसे ही गुलाम बनेंगे तो शक्ति इधर नहीं, इधर चली जाएगी। तो हमें वापस उस साधन का मालिक बनना है। ठीक है, रेडी? परमात्मा हमें एक बहुत अच्छी लाइन बताते हैं। परमात्मा कहते हैं, साधन का उपयोग करो लेकिन अपनी साधना को कभी भूलना नहीं, नहीं तो साधना भूली तो साधन के गुलाम बन जाएंगे। साधन को मालिक बनकर यूज करना है। कौन कौन इस फोन से अडिक्टेड है? हाँ, तो अडिक्शन में तो फिर स्वर्णिम भारत नहीं बनेगा ना, है ना? गुलामी को तो पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि गुलामी खत्म होगी तो स्वराज्य आएगा। हमको क्या स्थापन करना है? स्वराज्य स्थापन करना है। स्वराज्य मतलब किस पर राज्य? स्व पर राज्य। किस पर राज्य? मन का मालिक, कर्म इंद्रियों का मालिक। कौन कौन इस गुलामी को खत्म करने के लिए रेडी है? ओके, तो नोट करें, डायरी पेन है तो लिखेंगे क्या क्या करना है हमें इस फोन के लिए। सबसे पहली चीज, रात को सोने से पहले 1 घंटा और सुबह उठते ही 1 घंटा हमें इस फोन से इधर उधर की बातें कुछ भी ग्रहण नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारी नींद पर और हमारे दिन की शुरुआत पर प्रभाव डाल रहा है। आप में से किस किस को बैठे बैठे कभी भी नींद आ सकती है कहीं भी? सुबह उठने के बाद और सोने का मन करता है, इतने घंटे सोने के बाद भी नींद नहीं आ रही ठीक से, क्योंकि रात को सोने से पहले फोन के साथ बैठे थे। और ये फोन्स के साथ रात को बैठना मन की स्थिति पर भी प्रभाव डाल रहा है, तन के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो हम शाम को एक छोटा सा नियम बनाते हैं, शाम को जब घर पहुंचेंगे तो हम फोन को इस कोने में रखेंगे, फोन को बंद नहीं करेंगे, फोन का प्रयोग करेंगे, लेकिन फोन को एक कोने में रखेंगे घर के, जैसे पहले तार वाले फोन पड़े होते थे। कौन कौन था उस तार वाले फोन के युग में? हम सब थे ना। तो तब हम क्या करते थे, फोन बजता था, उठकर जाते थे, फोन पर बात करते थे, वापिस आ जाते थे, फोन को हाथ में लेकर बैठे नहीं रहते थे। तो पूरा दिन फोन को लेके बैठे रहो, लेकिन वो 2-3 घंटा सिर्फ जब शाम को अपने परिवार के साथ घर पर हो तो फोन को एक जगह रखो। फोन बजेगा, उठकर जाओ, बात करो, फोन को वापस उधर रख दो, घर के रिश्ते बदल जाएंगे। कौन है रेडी करने के लिए इतना सा त्याग अपने परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए? अच्छा पक्का पक्का रखने के लिए रेडी हो गए आप साइड पे, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, हमें लगता है ये मेरा टाइम है, हम फोन को लेके बैठते हैं, फिर हम कहते हैं बस 5 मिनट ही देखेंगे, वो 5 मिनट आधा घंटा बनता है या नहीं बनता, ये है गुलामी। तो हम रात को सोने से पहले जो कुछ देखेंगे वो नींद में गहरा हमारी सबकॉन्शियस के अंदर चला जाएगा, और जो हम ग्रहण करेंगे वो हमारे संस्कार बनते जाएंगे, क्योंकि वो हमारी सोच बनती है। तो हम जो कंटेंट ले रहे हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, निंदा, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा सब कुछ है। कर लें एक घंटा अपने आप को शांति दे सोने से पहले, कर सकते हैं। सोने से पहले अगर कुछ ग्रहण करना है तो वो बहुत बहुत शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, बाकी दुनिया की बातें नहीं, घर टूटने वाले सीरियल नहीं, विश्व का समाचार रात को नहीं ग्रहण करना है, विश्व को बदलने वाला संस्कार रात को ग्रहण करना है। विश्व का समाचार रात को ग्रहण करेंगे तो विश्व और वैसा बनता जाएगा। ये भी ठीक है प्रतिज्ञा, रात को सोने से पहले एक घंटा, फोन को अपने साथ रखकर सोना नहीं है, सिवाय डॉक्टर के रात को फोन किसी को नहीं आता है और। ठीक है बात ये कि नहीं है? ठीक बात, लोगों की नींद की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है जस्ट बिकॉज फोन साथ में पड़ा है सोने के टाइम। चौथी बात, सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं? रात में ये बिल्कुल गहरी नींद में गए, एकदम स्थिर हो गया मन, और हमने 5 मिनट ऐसे ऐसे भी किया, विश्व की सारी बातें उस पर डाल दी तो पूरी हलचल हो गई। सुबह उठकर पहले परमात्मा की याद करेंगे, शुक्रिया करेंगे, थोड़ी देर राजयोग का अभ्यास करेंगे, फिर योगा का अभ्यास करेंगे, ज्ञान का अध्ययन करेंगे, कम से कम आधा पौना घंटा अपने लिए देंगे ऐसा बनने के लिए, ऊपर लेकर जाने के लिए अपनी शक्ति को। ऐसे ही नहीं जाएगा, बैटरी को चार्ज करना है तो आधा पौना घंटा तो फोन को रखना पड़ता है ना साइड पर, आत्मा को चार्ज करना है तो कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए ही चाहिए। ये किसके पास है आधा पौना घंटा टाइम? और आपको पता है शुरू शुरू में ऐसा लगता है हम टाइम निकालना पड़ रहा है, समय निकालना पड़ रहा है, लेकिन समय निकालने से आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ती है कि हमारे सारे काम सहज होने लग जाते हैं और हमारे पास समय बढ़ जाता है, क्योंकि कम सोचते हैं, सही सोचते हैं, किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, सबको देने वाली आत्मा बनते हैं। तो इतना कर लेंगे हम, सुबह मेडिटेशन करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे, शरीर के स्वास्थ्य के लिए योग करेंगे और ज्ञान का अध्ययन करेंगे। तीसरी चीज, भोजन करते समय कभी फोन या टीवी ऑन नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कंप्लीट करें, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। जो आप फोन और टीवी पर देख रहे हैं वो सारी ऊर्जा, वो सारे शब्द भोजन में जा रहे हैं और फिर वही हमारे संस्कार बन रहे हैं। अगर आप करेंगे तब कहीं ना कहीं आपके कर्म का प्रभाव आपके बच्चों पर आएगा और तब कहीं वो इस गुलामी से छूटने का प्रयास भी करेंगे, नहीं तो हमारे से ज्यादा असर तो उन पर आ गया है। अब नियम बना लें अपने घर में कि भोजन के समय फोन टीवी बंद रहेगा। किस किस को लगता है ये नियम होना चाहिए घर में? 15 मिनट से ज्यादा तो लगते नहीं है खाना खाने के लिए, है ना, लेकिन उससे मन और शरीर दोनों शक्तिशाली बनेगा। तो इस नियम को अपनाएं घर जाकर। पांचवी चीज, अपने अन्न को सात्विक करें। किस किस को यहां शांति और लाइट फीलिंग आ रही है, ऐसे लाइट लग रहा है, हल्का लग रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण यहां का अन्न है, भोजन है। अगर हम में से कोई भी अभी भी मांसाहारी भोजन लेते हैं तो सोचें हम कौन सी वाइब्रेशन अपने अंदर डाल रहे हैं। किसी की नफरत, किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी का गुस्सा, किसी का भय, किसी का डर, हिंसा और फिर मृत्यु। हम कहते हैं इससे हमें स्वाद और स्वास्थ्य मिलता है, ये कौन सा कर्म है और ये कौन से अन्न से कैसा मन बनने वाला है। नवरात्रों में हम क्यों शाकाहारी सात्विक भोजन खाते हैं? क्योंकि हमें दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना है, तो भोजन को सात्विक करना पड़ता है। यहां से जाने के बाद 3 मास का प्रयोग करके देखें। कर सकते हैं? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और यहां का भोजन आपको इसलिए लाइट लगता है क्योंकि वो बिना प्याज लहसुन के बनता है, वो प्रसाद है। और एक और चीज अपने घर पे करें, भोजन बनाते समय परमात्मा की याद रहने चाहिए। तो आप कोई भी टेप रिकॉर्डर या फोन कुछ भी एक रसोई के लिए रखें जिसमें भजन, गीत, मंत्र, जो आपको अच्छे लगे वो रसोई में चलते रहने चाहिए। जैसे मंदिर में प्रसाद और गुरुद्वारे में लंगर बनता है ना, उस विधि से अगर हर रसोई में भोजन बनना शुरू हो गया तो घर स्वर्ग बनने लग जाएगा, क्योंकि घर में प्रसाद और अमृत मिलेगा। हम वो वाला युग है जो घर से बाहर जाते थे तो डब्बा लेकर घर से बाहर जाते थे, आज हम वो युग बन गए हैं कि घर में बैठकर हम डब्बा ऑर्डर करते हैं और हमारे घर डब्बा बाहर से आता है। इतना सा अन्न अगर बदल देंगे तो मन बदल जाएगा, और जब मन बदल जाएगा तो संसार बदल जाएगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है लेकिन अन्न से संकल्प बनता है, तो अन्न को हमने बदलना होगा। कर सकते हैं इतना? कौन कौन ये कर सकता है इतना? रसोई में परमात्मा की, आप में से कौन कौन खाना बनाता है अपने घर के लिए? आपके पास पूरे परिवार के मन की शक्ति की चाबी है। भोजन बनाते समय परमात्मा को याद करते हुए दोहराते जाइए, उनका नाम लेकर बोलते जाइए। वो शक्तिशाली आत्मा है, वो शांत आत्मा है, हमारा घर स्वर्ग है, हमारे रिश्ते मजबूत हैं, इसको दोहराते जाइए। और आखिरी चीज जो आप यहां से जाकर करेंगे, आप जहां जहां से आए हैं आपके नजदीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, राजयोग सेवा केंद्र है, आप सेंटर पर जाकर 5 दिन 1 घंटा निकालकर फिर से राजयोग कैसे करना है उसका अभ्यास सीखेंगे। हर 3-4 किलोमीटर में सेवा केंद्र इसलिए बना है ताकि हम सेवा केंद्र के वायुमंडल में जाकर राजयोग सीखते हैं। आपको यहाँ का वाइब्रेशन आपके घर के वाइब्रेशन से अलग लगता है या नहीं लगता? अलग है ना। इसी तरह जब आप सेवा केंद्र पर जाएंगे उसका वाइब्रेशन भी हमारे घर से अलग होता है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए भी सेंटर पर जाते हैं, हमें शक्ति मिलती है, वो ऊर्जा की ताकत मिलती है। और सबसे अच्छा होगा अगर आप 5 मिनट के लिए अपने बच्चों को भी वहां लेकर जाया करें, ताकि बच्चों को भी वो मेडिटेशन की शक्ति की ऊर्जा मिलेगी, और बच्चे उसी उम्र से मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करेंगे तो फिर एकाग्रता रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने चारों तरफ की बातों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आत्मा की शक्ति को क्या किया है? बढ़ाया है। लेकिन उनको सेंटर पर कौन लेके जाएगा? वो हम लेकर जाएंगे अगर हम जाएंगे तो। यहाँ से जाने के बाद हम उस अभ्यास को सीखेंगे, ठीक है? कौन कौन रेडी है करने के लिए? करना ही है, याद है ना? क्या बनाना है? क्या बनाना है? ऐसे से ऐसे करना है, ऐसे से ऐसे करना है। 2 मंत्र आज पक्के करते हैं। 2 मंत्र मतलब परमात्मा के महावाक्य। परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम सामने से आए, सबसे पहले उसको ये दुआ दो कि ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। रिपीट करें इसको, ये बात किस लिए आई है? ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। अगर हम कहते हैं ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ कैसे हो गया, तो हाथ कौन सा चल रहा है? और जैसे हमने कहा ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, तो हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। परिस्थिति बदल जाएगी हमारे कल्याण के लिए, हमें सिर्फ उसको वो आशीर्वाद देना है, अपनी स्थिति को ऊपर उठाना है। जैसे स्थिति ऊपर उठेगी, स्थिति से सृष्टि बदल जाएगी, ठीक है? सीधा होकर बैठें सभी। सीधा होकर बैठें, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखें। परिवार में, काम कारोबार में व्यवसाय में बातें आती हैं, ब्रिकुटी के बीच खुद को देखें, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, अब अपने आप को स्मृति दिलाएं, मैं सत्ययुगी आत्मा हूं, हर एक आत्मा है, हम सब परमात्मा की संतान, ये विश्व एक परिवार है, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मेरे जीवन में हर बात जो आती है वो कल्याण के लिए आती है, उसमें कल्याण समाया हुआ है, परिस्थिति को श्रेष्ठ शुभ भावना से, संकल्प की शक्ति को ऊपर उठाते हुए परिस्थिति पर प्रभाव डालेंगे। परिस्थिति हमको नहीं हिलाएगी, हम परिस्थिति को बदल देते हैं सिर्फ अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से। ये परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए आई है, किसी रिश्ते किसी व्यक्ति को देखिए जिसका संस्कार या स्वभाव हमें सही नहीं लगता, हमें तंग करता है, अपने आप को ऊपर उठाइए, हमें उन्हें शक्ति देनी है, हमें उन्हें परिवर्तित करना है, उन्हें शक्तिशाली बनाना है, तो उनको देखते हुए शुभ भावना दें कि आप आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, आप शक्तिशाली आत्मा हैं। सिर्फ उनसे कहते जाए, मन में कहना है, संकल्प से भेजना है। आपके घर में कोई परेशान है, उनको संकल्प भेजते जाए, आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप असंभव को संभव करने वाली आत्मा है, आप विजयी आत्मा है, आप सफलता मूर्त आत्मा है। संकल्प को ऊपर उठाएं, हमें उन्हें शक्ति देनी है। याद रखें, खुद को ऊपर उठाना है, उनके साथ नीचे नहीं जाना, अपनी चिंता से उनको नीचे नहीं लेकर जाना, अपनी शक्तिशाली स्थिति से उनको सशक्त बनाना है। कोई परेशान है, उनको संकल्प दें, आप शांत स्वरूप आत्मा है, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, आपके संस्कार दिव्य हैं, हमारा घर स्वर्ग है, भारत स्वर्णिम भारत है, सृष्टि सतयुग है। इस दृश्य को सामने लाएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, हर आत्मा दिव्य, देवी देवताएं इस सृष्टि पर, एक धर्म एक भाषा एक राज्य एक विश्व, ऐसी दुनिया बनाने के लिए परमात्मा ने हम सब आत्माओं को चुना है, ऐसी दुनिया हम सब ने मिलकर बनानी है, ये समय की पुकार है। दो मिनट के लिए बिल्कुल इसी साइलेंस में रहेंगे, एकदम एकाग्र एकरस इस मौन में आपके वाइब्रेशन पूरी सृष्टि को शक्ति दे रहे हैं। हमारे बीच हमारे मेहमान पहुंचेंगे, आप इस वायुमंडल से, इस वाइब्रेशन की शक्ति से उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल मौन में रहेंगे सभी।